الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15 اور 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ جو کوئی مارگ درشن پراپت کرتا ہے وہ اپنے لابھ کے لیے کرتا ہے، और जो पथभ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें। और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, इस मंथ की 12, मार्च की 2 और शाबान की 21 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे भोजन एवं पर्यटन, और अंतिम कार्यक्रम होगा अच्छी आदतें। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान में संसदीय चुनाव के लिए 40% से ज्यादा वोटिंग के बाद प्रारंभिक नतीजों की घोषणा कर दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी विदेश नीति में अफ्रीका को विशेष स्थान प्राप्त है। कर्नाटक के बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर को IED धमाकों में कम से कम 9 घायल हो गए हैं। हिजबुल्ला ने कई इसराइली सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरानी संसदीय और विशेषज्ञों की असेंबली के चुनावों के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि इन चुनावों में 40% से अधिक मतदान हुआ है। शनिवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मतगणना के परिणामों से पता चलता है कि संसदीय और विशेषज्ञों की असेंबली में मतदान की दर 40% से अधिक रही। कई निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों का ऐलान अभी बाकी है। मतदान शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे देश भर के 59,000 मतदान केंद्रों पर शुरू हुआ, जिसमें 15,000 से अधिक उम्मीदवार ईरानी संसद की 290 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 144 उम्मीदवार विशेषज्ञ असेंबली के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। विशेषज्ञ असेंबली के 88 सदस्य इस्लामी क्रांति के नेता की गतिविधियों की निगरानी करते हैं, जिसके पास इस्लामी क्रांति के नेता को नियुक्त करने या बर्खास्त करने का अधिकार होता है। दोनों चुनावों के लिए मतदान लगातार 16 घंटों तक जारी रहने के बाद स्थानीय समयानुसार आधी रात को समाप्त हुआ। कुल 61.17 मिलियन लोग, जिनमें 30.94 मिलियन पुरुष और 30.22 मिलियन महिलाएं शामिल हैं, चुनावों में मतदान करने के पात्र थे। ईरानी आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि 25 मिलियन से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रारंभ में मतदान स्थानीय समयानुसार शाम को 6 बजे समाप्त होने वाला था, लेकिन 3 बार समय बढ़ाया गया और ये रात को 12 बजे समाप्त हुआ।
राष्ट्रपति रेसी कहते हैं कि ईरान की विदेश नीति में अफ्रीका महाद्वीप को विशेष महत्व हासिल है। अल्जीरिया की यात्रा पर निकलने से पहले राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईस ने बताया कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर गैस निर्यात करने वाले देशों के संगठन की 7वीं शिखर बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से वे अल्जीरिया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्जीरिया वो देश है जिसने वर्चस्वादियों का मुकाबला किया, यही कारण है कि ईरान की जनता उसके इस प्रतिरोध का सम्मान करती है। ईरान के राष्ट्रपति का कहना था कि अल्जीरिया इस्लामी संस्कृति का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि तेल और गैस निर्यात करने वाले देशों के संगठन GECF ने ईरान और अल्जीरिया को अधिक निकट ला दिया है। राष्ट्रपति रईसी कहते हैं कि इस्लामिक गणतंत्र ईरान और अल्जीरिया में एक समानता ये है कि दोनों देश ये मानते हैं कि एक पक्षवाद का मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के व्यापारियों के लिए अल्जीरिया एक बहुत उचित बाजार है और दूसरी ओर ईरान भी फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों तथा केंद्रीय एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों के कारण अल्जीरिया के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी संपर्क की भूमिका निभा सकता है। ईरानी राष्ट्रपति कहते हैं कि गैस के निर्यातक देश होने के नाते हम क्षेत्र में इसके केंद्र की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक के इतर वे बैठक में भाग लेने वाले नेताओं से भेंटवार्ता करेंगे।
ग्लोबल फायर पावर ने ईरान को विश्व की 14वीं सैन्य शक्ति बताया है। सैन्य शक्ति की दृष्टि से इस्लामी गणतंत्र ईरान इस समय संसार में 14वें पायदान पर पहुंच गया है। विश्व के देशों की सैन्य शक्ति की रैंकिंग करने वाली विशेष सैन्य वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य शक्ति की दृष्टि से ईरान को दुनिया में 14वां स्थान दिया है। 145 देशों की सैन्य रैंकिंग करने वाली इस वेबसाइट ने 60 से अधिक मानकों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वर्तमान समय में ईरान विश्व में सैन्य शक्ति की दृष्टि से बहुत आगे पहुंच चुका है। ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में विश्व में सैन्य शक्ति के हिसाब से 10 बड़े देश इस प्रकार हैं: अमेरिका, रूस, चीन, भारत, दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन, जापान, तुर्की, पाकिस्तान और इटली। इस सूची में ईरान का 14वां नंबर है।
कर्नाटक के बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर 2 IED धमाकों में कम से कम 9 घायल हो गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धैया रामैया ने ब्रुकफील्ड अस्पताल जाकर घटना में घायल होने वालों का हाल चल जाना, घायलों में एक महिला भी शामिल है जो 40% तक जल गई है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का कहना है कि सरकार इस मामले की स्पष्ट और निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और सेंट्रल क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। 7 से 8 समूह बनाए गए हैं जो दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। हम नहीं चाहते कि बेंगलुरु में लोगों के मन में डर बैठे। हम पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश देंगे ताकि हर एंगल से मामले की जांच की जा सके। वहीं BJP ने प्रदेश सरकार से इस मामले में कड़ा कदम उठाने की अपील की है और कहा है कि सरकार को इसकी जांच NIA को सौंप देनी चाहिए। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने अनलॉफुल एग्जीक्यूटिव प्रिवेंशन कानून और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने कहा है कि घटना की जांच हो रही है, कई टीमें जांच में लग गई हैं और कई सुराग भी मिले हैं।
झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की एक युवती से सामूहिक बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। स्पेनिश युवती के साथ 1 मार्च को देर रात गए सामूहिक दुष्कर्म, लूटपाट और मारपीट की घटना हुई थी। जब यह वारदात हुई तब वो अपने पति के साथ सड़क किनारे एक टेंट में रुकी हुई थी। दुमका के SP पीताम्बर सिंह खेरवार का कहना है कि हमारी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और उनसे बातचीत की। पीड़िता ने बताया कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और घड़ी आदि लूट ली गई। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इसके बाद हम लोगों ने उनसे मिली जानकारी के आधार पर रात में ही 3 लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है, जल्द ही हम बाकी अभियुक्तों को भी पकड़ लेंगे। स्पेन दूतावास के अधिकारियों को हमने अपने स्तर से सूचना नहीं दी है।
फिलिस्तीन के प्रतिरोधी गुटों ने संकल्प लिया है कि वे ज़ायनी अत्याचारों के मुकाबले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। मॉस्को में आयोजित बैठक में भाग लेने वाले फिलिस्तीनी गुटों के नेताओं ने ज़ायनी अपराधों के सामने डटे रहने का ऐलान किया है। इन गुटों ने एक संयुक्त बयान जारी करके ज़ायनियों द्वारा गजा में किए जा रहे अत्याचारों के मुकाबले में कड़े प्रतिरोध का आह्वान किया है। अलमयादिन टीवी चैनल के अनुसार फिलिस्तीन के हमास और फतह सहित कई प्रतिरोधी गुटों ने रूसी अधिकारियों द्वारा आयोजित मॉस्को बैठक में एक दूसरे से भेंट करके गजा की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया। फिलिस्तीन के एक प्रतिरोधी गुट फतह के प्रवक्ता हुसैन हमायल ने इस बैठक का उद्देश्य एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन के लिए प्रयास करना बताया। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन की मांग की।
गजा युद्ध के दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्ला ने 1948 के ज़ायोनी शासन के कब्जे वाले क्षेत्रों में ज़ायोनी सैन्य ठिकानों पर कई बड़े हमले किए हैं। लेबनान के अलमयादीन टेलीविजन ने हिजबुल्ला के एक संक्षिप्त बयान के हवाले से कहा है कि इस्लामी प्रतिरोधी संगठन ने शुक्रवार देर रात खिरबित मार बेस पर सतह से सतह पर मार करने वाले दो फलक मिसाइल दागे, जो सटीक रूप से निर्धारित लक्ष्यों पर जाकर लगे। हिजबुल्ला लड़ाकों ने कफर हिल्स में रुवैसत अल आलम सैन्य ठिकाने में इसराइली सैनिकों की एक सभा को भी निशाना बनाया, जिसमें कई सैनिकों के हताहत होने के समाचार हैं। इसके अलावा लेबनानी प्रतिरोधी समूह ने अल मेनारा सैन्य स्थल के पास तैनात ज़ायोनी बलों को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्ला ने अन्य सैन्य ठिकानों पर भी रॉकेट बरसाए और ज़ायोनी सैनिकों में दहशत बैठा दी।
ज़ायोनी शासन के युद्धक विमानों ने गजा के आवासीय क्षेत्र पर हमला करके कई फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। मेयर समाचार एजेंसी के अनुसार ज़ायोनी युद्धक विमानों ने शनिवार की सुबह गजा पट्टी के देरुल लबल नामक आवासीय क्षेत्र पर बमबारी की। इस बमबारी में 6 फिलिस्तीनी शहीद हुए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इससे पहले भी ज़ायोनियों की ओर से देरुल बलह पर बमबारी की जा चुकी है। कुछ अन्य सूत्रों ने गजा में अलग अलग क्षेत्रों में ज़ायोनी सैनिकों और फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं के बीच गंभीर झड़पों की सूचना दी है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान में 1 मार्च को 12वीं संसद और विशेषज्ञ असेंबली के 6ठे कार्यकाल के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुए और कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। मतदान केंद्रों के दरवाजे सुबह 8 बजे खुल गए थे, लेकिन उससे पहले ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी। ब्रिटेन में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले एक चर्चित नेता जॉर्ज गालवे इस देश की संसद में पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली पर आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के पक्ष में नहीं है। ईरान में 1 मार्च को 12वीं संसद और विशेषज्ञ असेंबली के 6ठे कार्यकाल के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुए और कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। मतदान केंद्रों के दरवाजे सुबह 8 बजे खुल गए थे, लेकिन उससे पहले ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगीं। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद बूढ़े और जवान हर एक अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मतदान केंद्र पर हाजिर हुआ। साथ ही अख्तर अब्बास।
ایران میں پہلی مارچ کو 12ویں سنسد اور وشیشگیہ اسمبلی کے چھٹے کاریکال کے چناؤ بہت ہی شانتی پورن ڈھنگ سے آیوجت ہوئے اور کہیں سے بھی کسی اپریے گھٹنا کی خبر نہیں ملی۔ متدان کیندروں کے دروازے صبح 8 بجے کھل گئے، لیکن اس سے پہلے ہی متدان کیندروں پر لمبی لمبی قطاریں دکھائی دینے لگی تھیں۔ برف باری اور کڑاکے کی ٹھنڈک کے باوجود بوڑھے، مہیلائیں، جوان اور ہر ورگ کے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے متدان کیندروں پر حاضر ہوئے۔ متدان صبح 8 بجے سے 5 بجے تک ہونا تھا، لیکن جنتا کی بھرپور بھاگیداری کی وجہ سے چناؤ آیوگ نے 8 بجے رات تک سمے بڑھا دیا تاکہ سبھی لوگ اپنے اپنے متادھکاروں کا پریوگ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ اور اس کے بعد گرہ منترالے کی اور سے ایک بیان جاری کر کے متدان پرکریا کو رات 10 بجے تک بڑھا دیا گیا، لیکن یہ سمے بھی اپریاپت ثابت ہوا، جس کے بعد رات 12 بجے تک کے لیے متدان کا سمے بڑھایا گیا۔ متدان پرکریا پوری ہونے کے بعد متگننا شروع ہوئی اور کچھ کھیتروں کے پریڑام پوری طرح سے آ گئے اور جیتے ہوئے پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان بھی ہو گیا، جبکہ کچھ پرتیاشیوں میں کانٹے کی ٹکر ہوئی، جس کے بعد چناؤ دوسرے چرن میں چلے گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار کا چناؤ بھی اہم تھا، کیونکہ جنتا سب سے بہترین اور سب سے یوگیہ پرتیاشیوں کو چننے کی کوشش کر رہی تھی۔ موجودہ سنسد کا کاریکال مئی میں سماپت ہو رہا ہے۔ سنسد کی 290 سیٹوں کے لیے 15,200 امیدواروں کے ناموں کو نرکشن سنستھا کی اور سے منظوری ملی تھی۔ یہ ورش 1979 میں اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد سے امیدواروں کی سب سے بڑی سنکھیا ہے۔ امیدواروں میں 1,713 مہیلائیں تھیں، جو ورش 2020 کے سنسدیہ چناؤ میں بھاگ لینے والی 819 مہیلا امیدواروں کی تلنا میں دو گنا تھی۔ سنسد کے چناؤ کے ساتھ ہی وشیشگیہ اسمبلی کی 88 سیٹوں کے لیے 144 دھرم گروؤں کے بیچ مقابلہ ہوا۔ یہ سنستھا دیش کے سپریم لیڈر کے کام کاج پر نظر رکھتی ہے اور اگلا سپریم لیڈر چننے کا ادھیکار اسے ہی ہوتا ہے۔ ایران کی جنتا سانسدوں، راشٹرپتی اور شہر ایوم گاؤں پریشد کے سدسیوں اور اسلامی پریشدوں کے سدسیوں کی نیوکتی کرتی ہے، اسی لیے ایران کی راجنیتک ویوستھا میں لوگوں کی پرمکھ بھومیکا ہوتی ہے۔ اسلامی ویوستھا نے ہمیشہ جنتا کی ادھکتم بھاگیداری پر زور دیا ہے، اور یہ نہ کیول ویوستھا کے ادھیکار کے استر کو بڑھانے کے لیے ہے بلکہ ایرانی جنتا کی مانویہ گریما کا سمان اور رکشا کرنے کے لیے بھی ہے۔ جہاں ایک اور متدان کیندروں پر جنتا کی بھویہ اپستھتی تھی اور اس نے اپنی ذمہ داریوں پر پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے اپنے ادھیکاروں کا پریوگ کیا، وہیں دشمنوں کی سازشیں بھی شروع ہوئیں اور ان کے پروپیگنڈے متدان سے پہلے جو شروع ہوئے تھے وہ اب تک جاری ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بریٹن میں فلسطینیوں کا سمرتھن کرنے والے ایک چرچت نیتا جارج گالوے اس دیش کی سنسد میں پہنچے ہیں۔ ایک اور بریٹن جہاں اوائد زانوی شاسن کا کھلا سمرتھک، وہیں اس دیش کی سنسد میں فلسطین کے کسی سمرتھک کا پہنچنا لندن کے لیے کوئی شبھ سنکیت نہیں ہے۔ بریٹن کے منجھے ہوئے عوام پنتھی نیتا جارج گالوے مدھیاوتی چناؤ جیت گئے ہیں۔ اپنے چناؤی پرچار میں بریٹن کے اس نیتا نے غزہ کے سمرتھن کو پرمکھ مدعا بنایا تھا۔ ساتھ ہی قائم رضوی،
بریٹن میں فلسطینیوں کا سمرتھن کرنے والے ایک چرچت نیتا جارج گالوے اس دیش کی سنسد میں پہنچے ہیں۔ بریٹن جہاں پر اویدھ زایونی شاسن کا کھلا سمرتھک ہے، وہیں پر اس دیش کی سنسد میں فلسطین کے کسی سمرتھک کا پہنچنا لندن کے لیے کوئی شبھ سنکیت نہیں ہے۔ بریٹن کے منجھے ہوئے وامپنتھی نیتا جارج گالوے مدھیاوتی چناؤ جیت گئے ہیں۔ अपने चुनावी प्रचार में ब्रिटेन के इस नेता ने गजा के समर्थन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। वे ब्रिटेन के रॉचडेल नगर से चुनाव जीते हैं, जहां के 20% मतदाता मुसलमान हैं। उन्होंने सत्ताधारी दल द्वारा इसराइल के समर्थन की आलोचना करते हुए गजा के समर्थन में अपना कैंपेन चलाया और चुनाव में विजयी हो गए। चुनाव जीतने के बाद जॉर्ज गॉल्वे ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता को संबोधित करते हुए कहा, ये गजा के लिए है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि स्टार्मर और ऋषि सुनक दोनों ही एक सिक्के के दो रूप हैं। चुनाव में मेरी विजय उनके लिए एक अच्छा तमाचा है। ब्रिटेन ने अलक्सा तूफान ऑपरेशन के बाद से गजा में ज़ायोनियों के अत्याचारों के संदर्भ में गजा विरोधी नीति अपनाई है। जिस समय गजा पर इसराइल ने हमला आरंभ किया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह कहा था कि तेल अवीव को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और हम उसके इस अधिकार का समर्थन करते हैं। पश्चिम में जर्मनी के साथ ब्रिटेन अवैध ज़ायोनी शासन का शुरू से समर्थक रहा है। लंदन की ओर से इसराइल को हथियारों की आपूर्ति की जाती है, जिनके माध्यम से वो गजा में निर्दोष फिलिस्तीनियों का जनसंहार और जातीय सफाया कर रहा है। इसी बीच ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने इसराइल के लिए हथियारों की सप्लाई की रोक की मांग को अस्वीकार कर दिया है। मानवाधिकारों के बहुत से संगठनों के एक गठबंधन ने न्यायालय से ब्रिटेन की ओर से इसराइल के लिए हथियारों के निर्यात को बंद करने की मांग की थी। उनका मानना था कि इन्हीं हथियारों से गजा में फिलिस्तीनियों के विरुद्ध अपराध किए जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा इसराइल के समर्थन के बावजूद वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लंदन के अतिरिक्त ब्रिटेन के कई नगरों में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और गजा युद्ध को रुकवाने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर सामान्यतः हर सप्ताह के अंत में ये प्रदर्शन किए जाते हैं। ब्रिटेन के भीतर फिलिस्तीनियों के समर्थन से वहां की सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस देश में फिलिस्तीनियों के समर्थन और ज़ायोनियों के विरोध में निकाले जाने वाले जुलूसों के बारे में ये कहा है कि अतिवादियों ने सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। ऋषि सुनक ने जॉर्ज गॉल्वे की चुनावी जीत पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस प्रकार के लोग हमारे समाज से आशा और विश्वास को।
कश्मीर के सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली पर आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के पक्ष में नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही करवा कर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले ले रही है।
जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली पर आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटाया, डिलिमिटेशन भी की, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी छीना, परंतु अब भी उनमें हिम्मत नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए। पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर जितने भी विधानसभा के क्षेत्र है वो तश्कील दिए, परंतु अभी तक उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव करे या न करे, लेकिन जो परिस्थितियां सामने हैं उससे ये सिद्ध हो गया है कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें आदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा के चुनाव कराने होंगे, परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बेहतर अवसर था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने चाहिए थे ताकि यहाँ के लोग अपने प्रतिनिधि चुने। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अफसरशाही उनके अनुसार चल रही है और दिल्ली अपने मर्जी के फैसले करवा रही है, परंतु उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अगर यही स्थिति रही तो इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर कहा,
हिम्मत नहीं है ना विधानसभा चुनाव करने, सारा कुछ कर करा के भी वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। 370 भी हटाया, डिलिमिटेशन भी की, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज खींचे, उसके बाद सारे कानून बदलाए ताकि उनको उसका फायदा हो, रिजर्वेशन का सिलसिला भी उन्होंने चेंज किया ताकि उसका फायदा मिले, मंदिर भी, मोदी भी, मनी या तो पैसा भी, इन सब चीजों के बावजूद बीजेपी की आज भी हिम्मत नहीं है कि वो ये कहें कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो है एक साथ हों, वो लोगों का सामना नहीं कर सकते ना उनकी हिम्मत।
इस बीच जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के हवाले से وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ سپٹمبر سے پہلے کسی بھی حال میں یہاں پر ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، پرنتو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور جب بھی وہ آدیش دیں گے ان آدیشوں پر پالن ہوگا۔ جموں کشمیر یوٹی کے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو وعدے ہم نے ان سے کیے ہیں انہیں پورا کیا جا رہا ہے اور جموں کشمیر کو تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ بھارت کا تاج بنانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جو سمرتھن ہے اس سے ہم کافی خوش ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگ اب یہ جھوٹوں اور سچوں میں تمیز کرنا سیکھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے پردھان منتری نے جتنے بھی وعدے کیے وہ انہوں نے پورے کر دیے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی اسی ماہ یعنی 7 تاریخ کو جموں کشمیر کی یاترا کرنے جا رہے ہیں اور وہ سری نگر میں ایک جن سبھا کو بھی سمبوجت کریں گے۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
تو شوتو، سپتے محمد حسن کی اسی رپورٹ کے ساتھ راج نیتک چرچا کا دینک کاریہ یہیں پر سماپت ہوا۔
ایرانی ونجن، شروتا کارکرم ایرانی ونجن میں آپ کا سواگت ہے، میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ شروتا، آج کے کارکرم میں ہم بات کریں گے اتری خراسان پرانت کی سوادشت روٹیوں کی۔ اتری خراسان پرانت کی یاترا جاری ہے، ہم آپ کو آج شیروان شہر کی سیر پر لے جائیں گے۔ شیروان اتری خراسان کے بڑے سندر شہروں میں گنا جاتا ہے، یہ پوروتری ایران میں استھت ہے۔ یہ اس پرانت کا دوسرا سب سے ادھک آبادی والا شہر ہے جو ترکمانستان کی سیما کے قریب استھت ہے۔ بہت سے لوگ شیروان کا نام سنتے ہی اس شہر کی بات کرتے ہیں جو شہر کے دکشن میں استھت پہاڑ کے آنچل میں بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیروان کا نام ان بہادروں سے بھی جڑا ہے جو شیروان کے جنگلی علاقوں میں شیروں کا شکار اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایتیہاسک پہلو سے دیکھا جائے تو شیروان اتری خراسان اور ایران کے کلچر اور سبھیتا کے مکھ کیندروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کی پراچینتا 7000 سال تک بتائی جاتی ہے۔ اب تک اس علاقے میں 120 سے زیادہ ایتیہاسک و سانسکرتک ستھان اور اوشیش پراپت ہو چکے ہیں۔ پارسی جاتی کے لوگوں کی قبریں اسی طرح ایتیہاسک اوشیش شیروان میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ بہت پراچین کال سے مانو جیون کا کیندر تھا اور اسے خاص مہتو دیا جاتا تھا۔ بعد میں اتہاس کے الگ الگ دور میں بھی شیروان کی باتیں ہوئی ہیں۔ اشکانی شاسن کال میں اس علاقے میں بہت ادھک مہتو حاصل کرنے والی جگہیں نظر آئیں۔ اس کے کئی شتابدیوں بعد صفوی شاسن کال میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ شاہ عباس صفوی کے شاسن کال میں جو 1587 سے 1629 تک چلا، کردوں نے شیروان کی اور پلائن کیا۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس ایرانی راجا نے کئی بار شیروان میں پڑاؤ ڈالا اور یہاں سے باہری حملوں کا مقابلہ کیا، کیونکہ اسٹریٹیجک درشٹی سے یہ علاقہ بہت مہتوپورن تھا۔ پوشٹک اور سوادشت ایرانی کھانوں کا پریچے، گھر بیٹھے سیکھیے لذتدار ایرانی کھانے پکانے کی ودھی۔ کارکرم شنکھلا ایرانی ونجن میں ہر شنیوار کو کارکرم ایرانی ونجن۔
शताब्दियों के दौरान होने वाली प्राकृतिक घटनाओं ने इस आवासीय इलाके के ढांचे पर असर डाला। शिरवान 1929 में भूकंप की वजह से पूरी तरह खत्म हो गया, मगर दो साल के भीतर इसे दोबारा बसा दिया गया। शिरवान जो इस समय है उसका प्राचीन शिरवान नगर से प्रारूप की दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। अब तो प्राचीन शिरवान नगर के खंडहर नए शिरवान नगर के आसपास नजर आते हैं। शिरवान के इतिहास के बारे में चर्चा को रोकते हुए हम अब इस शहर की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, जो हर पर्यटक का दिल जीत लेती है। इस तखरी गांव का सुंदर झरना, नादिरी किले का टीला, गोलील पर्यटन क्षेत्र, गोलियान गांव, ये सब शिरवान के सुंदर दर्शनीय स्थल हैं। इस इलाके में बहुत पर्यटक गांव हैं, जिनमें एक का नाम जवारम है। जवारम में आपको आकर्षणों का संग्रह एक साथ नजर आता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर झरने और दूर तक फैली हरियाली इस इलाके की खासियतें हैं। ये उत्तरी खुरासान के बेहद सुंदर ठंडे इलाकों में है, जिसे बहिश्त का दर्रा भी कहा जाता है। जवारम गांव शिरवान से 28 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। श्रोता, हमने कार्यक्रम के पहले भाग में आपको शिरवान शहर और काउंटी के इतिहास और प्राकृतिक आकर्षणों के बारे में बताया। अब हम आपको उत्तरी खुरासान में रोटी के कल्चर के बारे में बताएंगे। यहाँ के स्थानीय रोटियाँ बहुत मशहूर हैं। उत्तरी खुरासान के स्थानीय पारंपरिक रोटियाँ दरअसल पूरे ईरान की प्राचीन रोटियों में गिनी जाती हैं। उत्तरी खुरासान के शहरों और गांवों में अलग अलग अवसरों पर 10 से ज़्यादा प्रकार की रोटियाँ पकाई जाती हैं। इन्हें कुछ दिन रखकर भी खाया जा सकता है और इन रोटियों की खुशबू और जायका बहुत मशहूर है। यहाँ से लोग रोटियों को सौगात के तौर पर ले जाते हैं। उत्तरी खुरासान के लोगों के स्थानीय कल्चर में कई प्रकार की रोटियां पकाने का रिवाज पुराना है। सुंदर, खुशबूदार, स्वादिष्ट रोटियां यहाँ के लोगों के जौक, कला और महिलाओं की महारत को दर्शाती हैं। ये घरेलू कला के रूप में एक नस्ल से दूसरी नस्ल को हस्तांतरित होता रहा है। उत्तरी खुरासान के लोग रोटी की क्वालिटी, उसमें मिलाई जाने वाली चीज़ों और उसके सुंदर आकार पर बहुत ध्यान देते हैं। उत्तरी खुरासान में 5 मुख्य जातियां बसती हैं। इनमें तुर्क, तुर्कमन, कोरबांज, तात और फारस हैं। इनमें से हर एक की अपनी अलग प्रकार की रोटियां और पकवान हैं। यहां पर बसने वाली जातियां जितनी पुरानी हैं, उनकी रोटियां और पकवान भी उतने ही पुराने हैं। समय गुजरने के साथ साथ रोटियां पकाने की विधि अधिक पुख्ता होती गई है और महारत बढ़ती गई है। यहाँ की रोटियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कतलमा रोटी, फतीर चरिशी रोटी, चूजमे रोटी, कुताब रोटी, कुमाज रोटी, फतीर जिजलाग रोटी, बीशमे रोटी और योखा रोटी। ये उत्तरी खुरासान की मशहूर स्वादिष्ट रोटियां हैं। पारंपरिक रोटियां मिट्टी के तनूर में गांवों में पकती हैं। इस पुरानी संस्कृति के बड़े खूबसूरत पहलू हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। मिट्टी का तनूर किचन के कोने में बनाया जाता है या फिर घरों के आंगन में एक तनूर खास जगह पर बना दिया जाता है। तनूर जमीन में गाड़ा नहीं जाता, बल्कि जमीन से ऊपर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाता है। ये तनूर खास मिट्टी से बनाया जाता है और इसे वे लोग बनाते हैं जो इस काम में महारत रखते हैं। तनूर के निचले भाग में एक सुराख होता है, जिससे राख बाहर निकाली जाती है। यहाँ हवा पास होने का रास्ता भी होता है। तनूर को लकड़ी या गोबर से गर्म किया जाता है, फिर बादाम और अखरोट का छिलका जलाकर उसे गर्म करते हैं। ज़माना तरक्की कर चुका है और रोटियां पकाने की मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन आज भी कुछ घरानों में महिलाएं अपने हाथ से रोटी पकाती हैं। हमने बताया कि इस इलाके में बसने वाले अलग अलग जातियों की वजह से यहाँ की रोटियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इस कार्यक्रम में हम एक विशेष रोटी के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिसका नाम फतीर रोटी है। उत्तरी खुरासान की बेहद स्वादिष्ट रोटियों में से एक फतीर है। ये रोटी ईरान में कई जगहों पर पकती है, लेकिन हर जगह की अलग शैली है। शिरवान की फतीर रोटी स्वादिष्ट मीठी रोटी होती है, जिसे आसानी से घर में पकाया जा सकता है और नाश्ते में परोसा जा सकता है। फतीर रोटी पकाने के लिए 500 ग्राम आटा, 200 ग्राम चीनी, एक चम्मच खमीर लिक्विड, एक तिहाई कप तेल, आधा लीटर दूध, एक अंडा और इच्छानुसार हल्दी पाउडर ले लीजिए। सबसे पहले खमीर लिक्विड को एक कप में रख दीजिए, फिर आधा कप दूध गर्म कर लीजिए और उसे एक बर्तन में डालिए। उसमें एक चम्मच शक्कर मिला दीजिए और घोल दीजिए। इसके बाद खमीर का लिक्विड उसमें डाल दीजिए, फिर बर्तन का ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इस तरह खमीर का लिक्विड तैयार हो जाएगा। अब बाकी बचे दूध को चूल्हे पर चढ़ी पतीली में डालिए और बाकी शक्कर भी उसमें डालकर मिला दीजिए। इसके बाद थोड़ी हल्दी पाउडर और एक तिहाई कप तेल उसमें डालकर अच्छी तरह मिला दीजिए और अब उसे चूल्हे से उतार लीजिए और उसमें अंडा फेंट कर डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह मिलाइए। अब उसमें खमीर का जो लिक्विड तैयार किया है उसे मिला दीजिए। अब आटे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालिए और चमचे से चलाते रहिए। जब खमीर बन जाए तो अब उसे हाथ से अच्छी तरह गूंथ लीजिए और वो रोटी बनाने के लिए लायक हो जाए। अब खमीर को प्लास्टिक से ढक दीजिए और एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए, इससे खमीर फूल जाएगा। एक घंटा गुजर जाने के बाद खमीर को बर्तन से निकालिए और उसे फिर से गूंथ लीजिए। अब इस खमीर की रोटी बनाने के लिए पहले छोटी लोइयां बनाइए और अब उन्हें अपनी पसंद का आकार दे दीजिए और ओवन की सेनी में रख दीजिए। ओवन को 170 डिग्री तापमान पर सेट कीजिए और सेनी को उसमें रख दीजिए। 20 मिनट बाद फतीर रोटी तैयार है। ये रोटियां बड़ी स्वादिष्ट होती हैं और जब गर्म ताज़ा हो तो इनका जायका और भी बढ़ जाता है। लोग जब ये रोटी पकाते हैं तो पड़ोसियों में भी बांटना नहीं भूलते। मेहमानों के आने पर ये रोटी बड़े मज़े से पकाई और खाई खिलाई जाती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक अनुमति दीजिए।
अच्छी आदतें।
दोस्तों, कार्यक्रम अच्छी आदतें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहरदादी और अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी या एक्ट्रोवर्ट की विशेषताओं की चर्चा की थी। हमने उल्लेख किया था कि हम सभी ने अपने जीवन में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का अनुभव किया है। हम सभी कुछ हद तक बहिर्मुखी हैं और केवल हमारी बहिर्मुखता की सीमा ही एक दूसरे से भिन्न होती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप अपने मित्र की तुलना में कम बहिर्मुखी हैं तो आप मान सकते हैं कि आप उसकी तुलना में अधिक अंतर्मुखी हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी बहिर्मुखता जितनी कम होगी आप उतने अधिक अंतर्मुखी हो सकते हैं।
अंतर्मुखी लोग खुद को सामाजिक गतिविधियों से दूर रखना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी लोगों को खुद को प्रबंधित करने के लिए आत्मनिरीक्षण और सोच विचार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें किसी भी हालत में ऐसी योजनाओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिसका नतीजा तुरंत हासिल करना हो, क्योंकि समीक्षा, विश्लेषण और योजना के माध्यम से चीज़ों को प्रबंधित करने में समय लगता है। इन लोगों को काम के लिए शांत और शांतिपूर्ण माहौल की ज़रूरत होती है। अधिकांश बहिर्मुखी लोगों को बैठकबाजी और पार्टियों में शामिल होना पसंद है। ये लोग कार्य करते हैं, बोलते हैं और फिर सोचते हैं। बहिर्मुखी लोगों को अक्सर बाहरी प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है कि वे निर्णय लेते समय और समाधान निकालते समय बाहरी जानकारी और स्रोतों पर भरोसा करते हैं। वे अपने दिमाग पर जोर डालने के बजाय अपनी क्षमताओं और शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके काम करते हैं।
बहिर्मुखी लोगों की एक और विशेषता यह है कि वे दोस्तों का नेटवर्क बनाना और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बातचीत करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर कोई समुदाय, स्कूल, विश्वविद्यालय और कार्यस्थल में बहिर्मुखी लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेता है। वे अलग अलग समूहों में शामिल होते हैं और अलग अलग लोगों की बातचीत में मौजूद रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये लोग समूहों, क्लबों और साथियों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करते हैं। समूह में और लोगों से घिरे रहने पर वे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अकेले रहने से उन्हें घबराहट होती है।
दोस्तों, इस सैद्धांतिक समझ के अनुसार अंतर्मुखता और बहिर्मुखता एक टाइपोलॉजी होने के बजाय एक तार की तरह जुड़े हुए हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि हम सभी अलग अलग स्तर पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हैं। इसलिए जो व्यक्ति मंथन करना पसंद करता है, उसे सामाजिक परिस्थितियों में रहना और नए समूह के साथ बातचीत करना भी पसंद हो सकता है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो बहिर्मुखी हैं, लेकिन बड़े समूहों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।
दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम फैसिलिटेशन स्किल और उससे हासिल करने की तकनीक पर चर्चा करेंगे। फैसिलिटेशन स्किल या सुविधा कौशल वाला व्यक्ति लोगों की प्रभावी ढंग से और कुशलता के साथ मदद कर सकता है। लचीलापन, समय प्रबंधन ऐसी फैसिलिटेशन स्किल तकनीक है जो लोगों को अपने दैनिक जीवन में प्रगति करने और अपने दैनिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इस कौशल का अभ्यास करने और उसे मजबूत बनाने से नौकरी खोजने और नौकरी मिलने के बाद कार्यस्थल पर भी मदद मिलती है।
फैसिलिटेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण आप लोगों की प्रगति और सफलता में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तैयारी, दिशा निर्देश, लचीलापन, सक्रियता और समय प्रबंधन फैसिलिटेशन स्किल के कुछ उदाहरण हैं। सुविधा प्रदान करने का कौशल प्रत्यक्ष प्रबंधक बनना नहीं बल्कि दूसरों को योगदान देना है।
दरअसल आप फैसिलिटेटर के रूप में अपने समूह को सुविधा तकनीकों के साथ व्यवस्थित करते हैं और एक सामान्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। फिर आप बातचीत को एक सामान्य लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके समूह को जो कुछ भी चाहिए वो प्रदान करते हैं। फैसिलिटेटर का मुख्य लक्ष्य सीधे तौर पर शामिल हुए बिना भागीदारी और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके टीम को निर्देशित करना होता है।
कार्य प्रक्रिया में फैसिलिटेटर फैसिलिटेशन के बजाय प्रबंध करने और सहायक और प्रभावित करने वाला होता है। इसलिए फैसिलिटेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समूहों और टीमों को प्रगति करने में सक्षम बनाती है। यहाँ हम इस विषय के महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करने जा रहे हैं।
फैसिलिटेटर क्योंकि एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है, इसीलिए वो टीम के दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है और किसी संयुक्त बिंदु पर पहुंचकर समस्या का समाधान निकालता है। इसके अलावा फैसिलिटेटर समूह की प्रगति के लिए जो भी आवश्यक होता है वो करता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रगति के लिए समय दक्षता आवश्यक है। इसके अलावा फैसिलिटेटर वो व्यक्ति होता है जो लोगों को समूह की समस्याओं को हल करने और समूह के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो इस बारे में निष्पक्ष रहता है कि समूह अपने अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है। वो तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है जब तक कि समूह सफलतापूर्वक परिणाम प्राप्त नहीं कर लेता।
फैसिलिटेशन तकनीकों में से एक निर्देशों का प्रबंध करना और उन्हें व्यवस्थित करना है। दिशा निर्देश समूह के सदस्यों को परियोजना की शुरुआत से ही एक सामान्य लक्ष्य रखने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर प्रगति उस समय तेजी से होती है जब समूह के सभी सदस्य इन दिशा निर्देशों से अवगत होते हैं और उन्हें पता होता है कि फैसिलिटेटर क्या चाहता है।
फैसिलिटेशन की एक अन्य तकनीक निष्पक्षता है। निष्पक्षता का अर्थ है कि टीम वर्क में निष्पक्षता बनाए रखने की क्षमता। एक फैसिलिटेटर के रूप में तटस्थता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको एजेंडा निर्धारित किए बिना टीम का मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम के सदस्य क्या चाहते हैं, आपकी टीम की सफलता आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसके अलावा फैसिलिटेटर लोगों को संवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे आमतौर पर प्रगति होती है। समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित करने से सबसे शर्मीले लोग भी बातचीत में शामिल होते हैं।
फैसिलिटेशन की एक अन्य तकनीक तैयार रहना है। तैयार रहना समूह की प्रगति और सुविधा के प्रभावी कारकों में से एक है। एक फैसिलिटेटर जो खुद तैयार रहता है वो समूह को एक सामान्य लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सक्षम होता है। लचीलापन एक अन्य तकनीक है। लचीलापन दरअसल परिवर्तन के अनुकूल ढलने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर फैसिलिटेटर टीम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य और मानसिकता के मद्देनजर ऐसा करता है। सक्रियता से सुनना भी सुविधा तकनीकों में से एक है और इसमें समूह के प्रत्येक सदस्य पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। लोग तब अधिक मददगार होते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है। फैसिलिटेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्रत्येक व्यक्ति की बात सुने। सामूहिक परियोजनाओं या बैठकों के दौरान प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक फैसिलिटेटर अपने समय प्रबंध कौशल का भी उपयोग करता है।
एक बेहतरीन फैसिलिटेटर बनने के लिए आपको अपनी ताकत विकसित करने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और फैसिलिटेशन प्रदान करने के अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता है। अगर आप कभी किसी समूह का प्रबंधन करने की स्थिति में हो तो एक नेता की तरह कार्य करने के बजाय फैसिलिटेशन प्रदान करने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप संभवतः अधिक प्रगति करेंगे और अपने लक्ष्यों को अधिक सफलता से प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले कि आपको फैसिलिटेशन का मौका मिले, अपने कमजोर बिंदुओं को तलाश करें और उन्हें मजबूत करना बेहतर करें।
अगर आप हमेशा फैसिलिटेशन के अवसरों की तलाश में रहते हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अभ्यास हो सकता है। चाहे आप 2 लोगों की मदद कर रहे हों या 20 लोगों की, आप अपने कौशल का अभ्यास करके एक फैसिलिटेटर के रूप में सफल हो सकते हैं।
कामकाजी लोगों के लिए फैसिलिटेशन तकनीक जानना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम इस संबंध में कर सकते हैं। सामान्य तौर पर सक्रिय रूप से सुनना एक सामाजिक कौशल है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसे फैसिलिटेशन कौशल की महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक माना जाता है, इसीलिए अपने सहकर्मियों की बात सुनने और सभी पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करें। अपने समूह के प्रत्येक सदस्य को सक्रिय रूप से सुनकर आप अपने सहकर्मियों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। कार्यस्थल पर इस कौशल का अभ्यास करने से अन्य लोग आपको अपने समूह के अगले प्रोजेक्ट के लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में चुनने की इच्छा जताएंगे।
जब आप लगातार सुधार के बारे में सोचते हैं तो आपकी फैसिलिटेशन तकनीक मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी प्रोजेक्ट को वीकेंड से पहले समाप्त करने की आवश्यकता होती है तो आवश्यक प्रगति के बारे में सोचने से स्वाभाविक रूप से काम करना आसान हो जाता है। समय प्रबंधन सुविधा और प्रगति के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। उदाहरण के लिए, जब आपका प्रबंधक आपको कोई कार्य सौंपता है जिसे आपको उसी दिन पूरा करना है, तो कार्य को विभाजित करें और प्रत्येक हिस्से को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए स्वयं को खास समय दें। आप अपने समय का प्रबंधन करने में जितना अधिक प्रभावी होंगे, आप उतने ही प्रभावशाली ढंग से पूरे समूह के लिए समय प्रबंधन कर सकेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم.